ओम शांति, ओम शांति। बाबा, हम बच्चों को रोज रोज याद की यात्रा पर रहने के लिए आग्रह करते हैं, तो आज भी बाबा ने भिन्न भिन्न युक्तियां बताई है, कैसे मुझे याद करो, क्यों याद करो, और सबसे बड़ी युक्ति क्या है। बाबा की याद रहने लिए सबसे बड़ी युक्ति क्या है, बाबा कहते चार्ट लिखो। चार्ट से पता चलेगा कि कितना हम बाबा को याद करते हैं। और बाबा ने कहा, भाग्यशाली बच्चे कौन होंगे जो बाबा जो श्रीमत देते हैं उसको अमल में लाते हैं। अब कितने चार्ट लिखते हैं, हाथ उठाओ भाई, कितने चार्ट लिखते हैं, थोड़े। तो आज बाबा ने विशेष रूप से इस पर और भी जोर दिया है। और बाबा कहते, तुम तो मिलिट्री वाले हो ना, रूहानी मिलिट्री है, तो रूहानी मिलिट्री को क्या कहा जाता है, सावधान। सावधान करते ना, अटेंशन। तो बाबा भी हमको सावधान करते हैं। क्यों याद जरूरी है, लेकिन कई बच्चे गपोड़े मारते हैं, क्या पर मैं तो बहुत याद में रहता हूँ, बहुत याद में रहता हूँ, सारा दिन याद में रहता हूँ। बाबा कहते, हो ही नहीं सकता। तो कौन होंगे जो बहुत याद में रहते हैं, बाबा ने बताया है, कौन होंगे, केवल बांधेलियां होंगी। जो बांधेलियां होगी ना, वो बाबा की याद में बहुत रहेगी, क्योंकि उनको सितम सहन करने पड़ते हैं, बहुत सहन करना पड़ता है, इसीलिए वो बाबा को बहुत याद करती है। और जो छुटेले हैं, कोई बंधन नहीं है, तो वो तो मस्त भी रहेंगे, हाँ हम तो बाबा के हो गए। लेकिन बाबा कहते हैं, इस पर अटेंशन दो। हाँ, क्यों बाबा जोर देते हैं, क्योंकि अंत के समय सिवाय बाप के और किसी की याद नहीं रहे, उसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। तो आज बाबा ने वो ध्यान खिंचवाया है, सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज 1/10/2025 है, और आज नवरात्रि का अंतिम दिन, नौवा दिन, और कल दशहरा होगा। मीठे बच्चे, रोज रात को अपना पोता मेल निकालो, डायरी रखो तो डर रहेगा कि कहीं घाटा ना पड़ जाए, क्योंकि चार्ट अच्छा नहीं होगा और बाबा को कैसे दिखाएंगे, तो इसीलिए कहीं घाटा ना पड़ जाए, इसलिए अपना पोता मेल रखो, डायरी रखो कि कहीं घाटा ना पड़ जाए। प्रश्न है, कल्प पहले वाले भाग्यशाली बच्चों को बाप की कौन सी बात फौरन टच होगी। सचमुच अगर हम बाबा के भाग्यशाली बच्चे हैं, तो बाबा की कौन सी बात फौरन टच होगी। उत्तर, बाबा रोज रोज जो बच्चों को याद की युक्तियां बतलाते हैं, वो भाग्यशाली बच्चों को ही टच होती रहेगी। अलबेले होंगे, आलस्य होगा, हाँ बहानेबाजी होगी, तो उनको क्या टच होगा। वो भाग्यशाली बच्चों को ही टच होती रहेगी, वो उन्हें फौरन अमल में लाएंगे। बाबा कहते हैं, बच्चे कुछ टाइम एकांत में बगीचे में जाकर बैठो। अब ये भी बाबा युक्ति बताते हैं, याद की एक कुछ टाइम निकाल, एकांत में बगीचे में जाकर बैठो, बाबा से मीठी मीठी बातें करो, अपना चार्ट रखो तो उन्नति होती रहेगी। ये कौन करेंगे? जो भाग्यशाली बच्चे हैं वो बाबा की बातों को अमल में लाएंगे। ओम शांति। मैत्री को पहले पहले सावधान किया जाता है, अटेंशन प्लीज। तो बाप भी बच्चों को कहते हैं, अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करते रहते हो। अटेंशन दिलाते हैं बाबा कि बाप, अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करते रहते हो। बच्चों को समझाया है ये ज्ञान बाप इस समय ही दे सकते हैं, यही समय है बाबा के आने का और ज्ञान देने का। बाप ही पढ़ाते हैं, भगवान वाच है ना, मूल बात ही हो जाती है कि भगवान कौन है, कौन पढ़ाते हैं। ये बात पहले समझने और निश्चय करने की होती है। फिर अति इंद्रिय सुख में भी रहना है, भगवान हमको पढ़ाते हैं तो अंदर में कितनी बाबा की याद रहे और अति इंद्रिय सुख की भासना हो। और निश्चय करनी होती है ये बात, फिर अति इंद्रिय सुख में भी रहना है। आत्मा को बहुत खुशी होनी चाहिए, हमको बेहद का बाप मिला है। कितनी खुशी होनी चाहिए? बेहद खुशी, क्योंकि बेहद का बाप मिला है। बाप एक ही बार आकर मिलते हैं, किस लिए? वर्षा देने लिए मिलते हैं। किसका वर्षा? विश्व की बादशाही का वर्षा देते हैं, और वो भी 5000 वर्ष पहले। मिसल 5000 साल पहले भी वर्षा दिया था, अब फिर से दे रहे हैं 5000 वर्ष पहले मिसल। अब ये तो पक्का निश्चय है ना कि बाप आया हुआ है। फिर से सहज राजयोग सिखलाते हैं, सिखलाना पड़ता है। कल पहले सिखाया था लेकिन सब भूल गए, अब बाबा को फिर से सिखलाना पड़ता है। बच्चे को कोई सिखलाया नहीं जाता है, हाँ बाप को याद करना ये बच्चे को सिखलाया नहीं जाता है, आपे ही मुख से मम्मा बाबा निकलता रहेगा। मम्मा 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 पापा पापा कहता ही रहता है ना छोटा बच्चा, तो आपे ही मुख से मम्मा बाबा निकलता रहेगा, क्योंकि अक्षर तो सुनते हैं ना, तो इसीलिए मुख से निकलता है वो शब्द मम्मा पापा, क्योंकि अक्षर तो सुनते हैं ना। अब ये है रूहानी बाप, आत्मा को आंतरिक गुप्त नशा रहता है। आत्मा को ही पढ़ना है, परम पिता परमात्मा तो नॉलेजफुल है ही है, वो तो सदा ज्ञान का सागर है, उनको नहीं पढ़ना है किसी से। परम पिता परमात्मा तो नॉलेजफुल है ही, वो कोई पढ़ा नहीं है किसी से, उसको पढ़ना नहीं है तो वो कोई पढ़ा नहीं है, उनमें तो नॉलेज है ही, अविनाशी नॉलेज है, उनमें तो नॉलेज है ही। किसकी नॉलेज? ये भी तुम्हारी आत्मा समझती है। किसकी नॉलेज बाप पे है ही? हाँ, रचयिता और रचना की नॉलेज। बाबा में सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है, कैसे एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश होता है, ये सब जानते हैं बाबा, ये सब जानते हैं कैसे एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश होता है। इसलिए परमात्मा को जानी जानन हार कहते हैं, यानी अंदर एक एक की में क्या सोच चल रहे हैं उनको जानता है, लेकिन अपनी रचना के बारे में सब जानता है। इसलिए उनको जानी जाननहार कहते हैं। जानी जाननहार का अर्थ क्या है? ये कोई भी बिल्कुल जानते नहीं। अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया है कि ये स्लोगन भी जरूर लगाओ। बाबा कहते हैं ये स्लोगन लगाओ। कौन सा स्लोगन लगाओ? कि मनुष्य होकर अगर क्रिएटर और रचना के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन रेपिटेशन को नहीं जाना तो क्या कहा जाए। मनुष्य होकर रचयिता रचना के आदि मध्य अंत और अवधि और कैसे वो पुनरावृत होता है अगर वो नहीं जाना तो क्या कहा जाएगा उसको। ये रेपिटेशन अक्षर पुनरावृत्ति होती है फिर से होता है। ये रेपिटेशन अक्षर भी बहुत जरूरी है। करेक्शन तो होती रहती है ना। गीता का भगवान कौन, ये चित्र बड़ा फर्स्ट क्लास है। सारे वर्ल्ड में ये है सबसे नंबर वन भूल। कौन सी भूल? भगवान कोई भूल गए और गीता पर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। तो बाबा कहते हैं ये है सबसे नंबर वन भूल। परम पिता परमात्मा को न जानने कारण फिर क्या कह देते हैं? कितनी मंतव्य है परमात्मा के बारे में, क्योंकि सही रूप में तो परमात्मा को जानते नहीं है। तो जो जिसकी मत है वो अपनी सुनाते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं परम पिता परमात्मा को न जानने कारण फिर कह देते हैं सब भगवान के रूप है। किसी से पूछो ना भगवान कहाँ है, ये सब भगवान के ही तो रूप है, ये सब भगवान ही भगवान है। कई मतलब मंतव्य है। तो फला तो भगवान के रूप है। तो भगवान एक मिसाल दिया है, जैसे छोटे बच्चे से पूछा जाता है तुम किसका बच्चा हो, तुम्हारे पिता का नाम क्या है, पूछते ना बच्चे से, वो कहेगा फलाना, उसका पिता का नाम बताएगा। अच्छा फिर वो फलाना आपका पिता वो किसका बच्चा है, तो आपकी दादा का नाम बताओ, यही कहेंगे, तो फिर दादा का भी नाम बता देगा। अच्छा फलाने का, फिर और आगे पूछो तो और आगे तो उसको पता ही नहीं होगा परदादा का नाम। हाँ किसी को पता है अपने परदादा का नाम? दादा तक तो पता होगा, मेरे पिता का नाम, मेरे दादा का नाम, मेरे परदादा का नाम और उसके पिता का नाम, उसके पिता का नाम, सबका पता है, कितनी जनरेशंस का पता है। हाँ इतना तो कुछ पता नहीं होता। तो फिर क्या कह देता है बच्चा, अगर नहीं उसको पता होता है तो फिर वो कह देगा वो हमारा बच्चा, या तो कह देगा मैं, जो पता तो है नहीं ना, तो वो कह देगा मैं। तो बाबा कहते हैं फिर वो कह देगा वो हमारा बच्चा। वैसे ये भी भगवान को जानते नहीं तो कह देते हम ही भगवान है, हाँ मैं हूँ, अपना ही नाम बता देंगे क्योंकि पता तो है नहीं। तो फिर कह देगा हम ही भगवान है। इतनी पूजा भी करते हैं परंतु समझते नहीं हैं। गाया जाता है ब्रह्मा की रात तो जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणियों की भी रात होगी। ये सब धारण करने की बातें हैं। ये धारणा उनको होगी, सारी बातें जो बाबा सुनाते हैं वो पूरी अंदर में धारण हो जाए, ये उनकी बुद्धि में आएगा। उनको धारणा होगी जो योग में रहते हैं। अगर योग में रहते नहीं तो ये धारणा कैसी होगी इन बातों की। याद को ही बल कहा जाता है। ज्ञान तो है सोर्स ऑफ इनकम, पढ़ाई है ना, तो पढ़ाई से तो कमाई होती है। तो बाबा कहते याद को ही बल कहा जाता है। ज्ञान तो है सोर्स ऑफ इनकम, याद से शक्ति मिलती है जिससे विकर्म विनाश होते हैं। तो तुम्हें बुद्धि का योग बाप से लगाना है। ये ज्ञान बाप अभी ही देते हैं, फिर कभी मिलता ही नहीं है। सोचो कितना मूल्यवान है ये ज्ञान जो अभी ही मिलता है, सारे कल्प में फिर नहीं मिलता है, फिर कभी मिलता ही नहीं है। और सिवाय बाप के ये ज्ञान कोई दे न सके। बाकी तो सब है भक्ति मार्ग के शास्त्र, कर्म कांड की क्रियाएं, जो कुछ दुनिया में मिलता है वो सब भक्ति मार्ग के शास्त्र कर्म कांड की क्रियाएं हैं, उसको ज्ञान नहीं कहेंगे। स्पिरिचुअल नॉलेज एक बाप के पास ही है और वो ब्राह्मणों को ही देते हैं। अगर कोई के पास और कोई के पास स्पिरिचुअल नॉलेज होती नहीं दुनिया में, बाबा कहते हैं दुनिया में कितने धर्म मठ पंथ है, कितनी मते हैं, तो बच्चों को समझाने में कितनी मेहनत होती है, कितने तूफान आते हैं, माया के तूफान आते हैं ना तो बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं, कितने तूफान आते हैं, गाते भी हैं, फिर जब बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तो परमात्मा के लिए क्या कहते हैं, मेरी नैया पार लगाओ प्रभु, हाँ प्रभु मेरी नैया पार लगाओ। अब सबकी नैया तो पार नहीं जा सकती, क्यों बाबा कहते हैं सबकी नैया पार नहीं जा सकती, भले बाबा के बच्चे बनिए और अभी बाबा हमारी जीवन नैया को पार कर रहे हैं, हाँ है ना, खिवैया बन के हमें ले जा रहे हैं, लेकिन बाबा कहते हैं सबकी नैया पार नहीं जा सकती। किस किस बाबा ने किस भाव से कहा, कोई डूब भी जाएगी, अब नैया तो हम सबकी जीवन नैया, लेकिन बाबा कहते कोई की नैया डूब जाएगी, डूब जाएगी माना हाँ चले जाएंगे, बाबा को छोड़ के चले जाएंगे तो जैसे नैया डूब गई, कोई खड़ी हो जाएगी, खड़ी हो जाएगी, आगे पुरुषार्थ बढ़ाते ही नहीं है, बस जहाँ है वही खड़े हैं, कोई खड़ी हो जाएगी। दो तीन वर्ष हो जाते हैं कईयों का पता ही नहीं, ऐसे पुराने भाई बहने कितने बाबा कहते चले गए, पता ही नहीं अभी कहाँ, दो तीन साल से आते ही नहीं है, तो माना कहीं चले गए ना, उनकी नैया डूब गई, कईयों का पता ही नहीं है। और कोई तो पुर्जा पुर्जा हो जाते हैं, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, माना इतनी उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, जो उनकी बुद्धि में ये ज्ञान अक भी नहीं आया होगा, तो इतने टुकड़े टुकड़े हो जाती है। कोई की तो पुर्जा पुर्जा हो जाती है, होता है ना तूफान आते हैं तो नाव कैसे डूब जाती है, टुकड़े टुकड़े हो जाती है, कोई वहां ही खड़े हो जाते हैं। अब इसमें मेहनत बहुत है क्योंकि तूफान लगता है माया का, तो बाबा कहते हैं नैया डूब जाएगी, खड़ी हो जाएगी, पुर्जे पुर्जे हो जाएगी, इसलिए मेहनत बहुत है। आर्टिफिशियल योग भी कितने निकले हैं, तूफान लगते हैं कई प्रकार के आर्टिफिशियल योग भी बहुत सुना दिखाते हैं, कितने योग आश्रम हैं, तो रूहानी योग आश्रम कोई हो न सके। बाप ही आकर आत्माओं को रूहानी योग सिखलाते हैं। बाबा कहते हैं ये तो बहुत सहज योग है, बहुत सहज योग सिखाते हैं, इन जैसा सहज कुछ भी है नहीं, जो बाबा हमें राजयोग सिखाते हैं इस जैसा सहज योग कोई और योग है ही नहीं। आत्मा ही शरीर में आकर पाठ बजाती है, 84 जन्म मैक्सिमम है, अधिक से अधिक 84 जन्म, बाकी तो कम कम होते जाएंगे। ये बातें भी तुम बच्चों में कोई की बुद्धि में है, बुद्धि में धारणा बड़ा मुश्किल होती है। तो पहली बात बाप समझाते हैं, कहाँ भी जाते हो, कहाँ भी जाते हो तो पहले पहले बाप का परिचय दो। बाप का परिचय कैसे दे रहे इसके लिए भी युक्ति रची जाती है। हाँ बाबा कई प्रकार की युक्ति बताते कैसे बाप का परिचय दो। वो जब निश्चय हो तब समझे बाप तो सत्य है। हाँ जो ये परिचय दे रहे हैं ये सत्य परिचय है परमात्मा का, निश्चय जब बैठे। जरूर बाप सत्य बातें ही बताते होंगे, इनमें संशय नहीं लाना चाहिए। याद में ही मेहनत है, इसमें ही माया ऑपोजिशन बनती है, माया विरोध करती है, माया का ऑपोजिशन होता है। घड़ी घड़ी याद भुला देती है, इसीलिए बाबा कहते हैं चार्ट लिखो, तो बाबा भी देखे कौन कितना याद करते हैं। क्वार्टर परसेंट भी चार्ट नहीं रखते होंगे, लेना दे रहे बाबा, क्वार्टर परसेंट भी याद नहीं, चार्ट नहीं रखते होंगे। चार्ट लिखो बाबा कहते हैं, तो बाबा भी देखे कौन कितना याद करते हैं। तो क्वार्टर परसेंट भी चार्ट नहीं रखते हैं। कोई कहते हैं क्या लबाड़ मारते हैं, कोई कहते हैं कि हम तो सारा दिन याद में रहता हूं। बाबा कहते हैं ये तो बड़ा मुश्किल है। बाबा ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं, क्योंकि बाबा ही कहते हैं मैं भी भूल जाता हूं, तो बाबा कहते हैं ये तो बड़ा मुश्किल है। सारा दिन रात तो बांधेलिया जो मार खाती रहती है वो याद में रहती होगी। शिव बाबा कब इन संबंधियों से हम छूटेंगे, वो बाबा को कहती रहती होगी बांधेलिया कि शिव बाबा हम कब इन संबंधियों से छूटेंगे। आत्मा पुकारती है बाबा हम बंधन से कैसे छूटे, आत्मा पुकारती है बाबा हम बंधन से कैसे छूटे। अगर कोई बहुत याद में रहते हैं तो बाबा को चाट भेजे, डायरेक्शन मिलते हैं रोज रात को अपना पोता मेल निकालो, डायरी रखो। डायरी रखने से डर रहेगा हमारा घाटा ना निकल आए, क्योंकि डायरी में चार्ट लिखा और वो चार्ट ठीक नहीं है तो घाटा हुआ ना, हमारा घाटा ना निकल आए। बाबा देखेंगे तो क्या कहेंगे, ये चार्ट ऐसा चार्ट बाबा को कैसे दिखाऊंगा, बाबा क्या कहेंगे। इतने मोस्ट बिलविड बाबा को इतना समय ही याद करते हो, इतना थोड़ा समय याद करते हो। लौकिक बाप को स्त्री को तुम कितना याद करते हो, लौकिक बाप को स्त्री को तुम कितना याद करते हो, और मुझे इतना थोड़ा भी याद नहीं करते हो। देखो कैसा वो लेना देते हैं बाबा। चार्ट लिखो तो आप ही लज्जा आएगी, इस हालत में मैं पद पा नहीं सकूंगा। इसीलिए बाबा चार्ट पर जोर दे रहे हैं, बाप को और 84 के चक्र को याद करना है तो फिर चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। आप समान बनाएंगे तब तो प्रजा पर राज्य करेंगे। चलो याद करेंगे भी बाबा को और चार्ट भी लिखेंगे, परंतु फिर सेवा नहीं करेंगे तो बाबा कहते फिर प्रजा कैसे बनाएंगे। तो आप समान बनाएंगे तब तो प्रजा पर राज्य करेंगे, ये है ही राजयोग। राजयोग अर्थात नर से नारायण बनने के लिए योग। तो नर से नारायण बनने का योग, एम ऑब्जेक्ट ये है, नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी, ये हमारा एम ऑब्जेक्ट है। जैसे आत्मा को देखा नहीं जाता है, समझा जाता है, अब इसमें आत्मा है ये भी समझा जाता है। इसकी आत्मा को देख तो सकते नहीं ना, पर समझ सकते कि जरूर ये चेतन में है, अब ये आत्मा इसमें है, ये भी समझा जाता है। अब इन लक्ष्मी नारायण की जरूर राजधानी होगी, इन्होंने सबसे जास्ती मेहनत की है तब स्कॉलरशिप पाई है। मम्मा बाबा ने सबसे जास्ती मेहनत की तब इतनी बड़ी स्कॉलरशिप मिली जो लक्ष्मी नारायण बने, तब स्कॉलरशिप पाई है। जरूर इन्हों की बहुत प्रजा भी होगी, कितनी सेवा बाबा करते थे, कितनी आत्माएं बाबा से निकली है, तो बाबा ज्ञान देते थे, मम्मा कहाँ कहाँ जाती थी, मम्मा क्लासेस कराती थी, मुरली सुनाती थी। तो बाबा कहते हैं जरूर इन्हों की बहुत प्रजा होगी, ऊंच से ऊंच पद पाया है, जरूर बहुत योग लगाया है, तब पास विद ऑनर हुए। ब्रह्मा बाबा मम्मा वही लक्ष्मी नारायण बनते हैं, तो उन्होंने बहुत पूर्व जन्म में कितनी मेहनत की होगी, तब पास विद ऑनर हुए। ये भी कारण निकालना चाहिए, हमारा योग क्यों नहीं लगता है। धंधे आदि के झंझट में बहुत बुद्धि चली जाती है, इसलिए योग नहीं लगता है, क्योंकि धंधे आदि के झंझट में बहुत बुद्धि चली जाती है। उसे टाइम निकाल इस तरफ जास्ती ध्यान देना चाहिए, यही समय की मांग है कि और सब बातों से ध्यान निकाल, बाबा के तरफ ध्यान हो, इसकी बहुत ज्यादा मांग है। ध्यान देना चाहिए, कुछ टाइम निकाल बगीचे में एकांत में बैठना चाहिए। फीमेल तो जा न सके, क्योंकि उस समय तो हम आताई तो कहाँ घर से निकल पाती थी, चार दीवारों में रहती थी, तो इसलिए बाबा कहते फीमेल तो जा न सके, उनको तो घर संभालना है, पुरुषों को तो सहज है। कल्प पहले वाले जो भाग्यशाली होंगे उनको ही ये टच होगा। पढ़ाई तो बहुत अच्छी है, बाकी हर एक की बुद्धि अपनी अपनी होती है, कैसे भी करके बाप से वर्षा लेना है, तो बाप डायरेक्शन तो सब देते हैं, अब करना तो बच्चों को ही है। बाबा डायरेक्शन देंगे जनरल, मुरली में डायरेक्शन देंगे, एक एक को तो नहीं देंगे, बाबा डायरेक्शन देंगे जनरल, एक एक पर्सनल भी अगर कोई पूछे तो राय दे सकते हैं। तीर्थों पर बड़े बड़े पहाड़ों पर जाते हैं, अमरनाथ कितना ऊंचा, बद्रीनाथ केदारनाथ जाते हैं ना, तो तीर्थों पर बड़े बड़े पहाड़ों पर जाते हैं तो पंडे लोग सावधान करते रहते हैं, हाँ उनको पगडंडी और तो लकड़ी भी साथ में ले जाते हैं, कहीं वो ठोकर न लगे, तो बाबा कहते हैं तो पंडे लोग सावधान करते रहते हैं, बड़ी मुश्किल से जाते हैं, तो तुम बच्चों को तो बाप बहुत सहज युक्ति बताते हैं, हाँ ये सब करने की जरूरत नहीं है, पहाड़ों पर दर्शन करने जाने की जरूरत ही नहीं है, आजकल दोबारा सहज भी हो गया है ना, तो बाबा कहते तो अभी तो बहुत जाते हैं, तो तुम बच्चों को तो बाप बहुत सहज युक्ति बताते हैं, बाप को याद करना है, शरीर का भान खत्म करना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो बाप आकर नॉलेज देकर, हाँ फिर बाबा कहते हैं चले जाते हैं, नॉलेज देकर फिर बाबा चले जाते हैं। आत्मा जैसा तीखा रॉकेट और कोई हो नहीं सकता। वो लोग मून आदि तरफ जाने का कितना, जाने में कितना टाइम वेस्ट करते हैं। उस समय 60s में बहुत होड़ थी, हाँ कैसे चंद्रमा पर जाएं, वो लोग मून आदि तरफ जाने में कितना टाइम वेस्ट करते हैं। अब ये भी ड्रामा में नूंद है, बाबा कहते वो साइंस का भक्का है, हाँ रॉकेट्स कैसे भेजते हैं मून तरफ, ये भी ड्रामा में नूंद है, ये साइंस का हुनर भी विनाश में मदद करता है। वो है साइंस और तुम्हारी है, हमारी क्या है, साइलेंस। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, ये है डेड साइलेंस। कई प्रकार की साइलेंस है, स्वीट साइलेंस भी है, डेड साइलेंस भी है, हा? तो बाबा कहते ये है डेड साइलेंस, बस आत्मा समझ बाप को याद करना, जैसे मर गए शरीर से, यह है डेड साइलेंस। मैं आत्मा शरीर से अलग हूं, ये शरीर पुरानी जुत्ती है, सर्प और कछुए के मिसाल भी तुम्हारे लिए है। सर्प का मिसाल कैसे है, हाँ पुरानी चमड़ी छोड़कर नई चमड़ी ले लेता है, तो अभी ये पुराना शरीर छोड़ना है, नया चोला लेना है, तो ये सर्प का मिसाल और कछुए का मिसाल एक सेकंड में अपने इंद्रियों को एकाग्र कर देना, अंदर ले लेना, कछुए मिसल एकदम अशरीरी बन जाना। तो बाबा कहते हैं सर्प और कछुए के मिसाल भी तुम्हारे लिए है तुम ही। फिर भ्रमणी का मिसाल बाबा कहते हैं वो भी तुम्हारा ही मिसाल है। तुम्हें कीड़े जैसे मनुष्यों को भू भू कर मनुष्य से देवता बनाती हो। विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाना ये तुम्हारा काम है। सन्यासियों को ये यज्ञ तप आदि कुछ भी करना नहीं है। सन्यासी माना सब को छोड़ देना, वहां जाके कंदराओं गुफाओं में जंगल में जाके तपस्या करना। तो ये यज्ञ तप आदि आदि बाबा कहते हैं या पूजा पाठ ये सब सन्यासी नहीं करते। सन्यासियों को ये यज्ञ तप आदि कुछ भी करना नहीं है। भक्ति और ज्ञान ये दोनों गृहस्थियों के लिए है। भक्ति भी गृहस्थियों के लिए और ज्ञान भी गृहस्थियों के लिए है। उन्हों को तो सतयुग में आना नहीं है। सन्यासियों का तो फिर धर्म ही अलग है, वो तो आदि शंकराचार्य के आने के बाद वो सन्यास धर्म शुरू होता है। तो बाबा कहते हैं उन्हों को तो सतयुग में आना नहीं है। वो क्या जाने इन बातों से भक्ति और ज्ञान। ये भी ड्रामा में मूंद है इस निवृत्ति मार्ग वालों की। ड्रामा में मूंद है क्योंकि सृष्टि को थमाना है तो उनकी पवित्रता की आवश्यकता है। जो भक्ति ज्ञान में है वो तो पवित्र नहीं होते ना, पर सन्यासी पवित्र रहते हैं तो सृष्टि को थमाने में मदद करते हैं। तो ये भी ड्रामा में मूंद है इस निवृत्ति मार्ग वालों की। जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए हैं वो ड्रामा अनुसार आते रहेंगे, बाबा के बनेंगे। इसमें भी नंबर वार निकलते रहेंगे। माया बड़ी प्रबल है, आंखें बड़ी क्रिमिनल बनती है। ज्ञान का तीसरा मित्र मिलने से आंखें सिविल बनती है। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला, इस तीसरे नेत्र से आत्माओं को देखते हैं तो ये आंखें भी सिविल हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। तो बाबा कहते हैं ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलने से आंखें सिविल बनती है, फिर आधा कल्प कभी क्रिमिनल नहीं बनेगी। ये आंखें सत्युग त्रेता में कभी क्रिमिनल नहीं होती है, विकारी नहीं होती है। ये है बड़ी धोखेबाज आंखें, धोखेबाज है। तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना तुम्हारी कर्म इंद्रियां शीतल होती जाएगी। फिर 21 जन्म कर्म इंद्रियों को चंचलता में आना ही नहीं है। वहां कर्म इंद्रियों में चंचलता होती नहीं, सब कर्म इंद्रियां शांत सतोगुणी रहते हैं। इसलिए उन देवताओं के लिए गायन है ना, नयन कमल चरण कमल हस्त कमल मुख कमल हृदय कमल सब कमल यानी शुद्ध पवित्र। तो बाबा कहते हैं सब कर्म इंद्रियां शांत सतोगुणी रहती है। वे अभिमान के बाद ही सब शैतानी आती है। इंद्रियों की शैतानी कब शुरू होती है, जब वे अभिमान में आते हैं। तो दे अभिमान के बाद ही सब शैतानी आती है। बाप तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। आधा कल्प के लिए तुमको वर्षा मिल जाता है। तो जितनी जो मेहनत करते हैं उतना ऊंच पद पाएंगे। मेहनत करनी है तो मेन मेहनत, मुख्य मेहनत कौन सी है, देही अभिमानी बनने की। फिर कर्म इंद्रियां धोखा नहीं देगी, अंत तक युद्ध चलती रहेगी। जब कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तब वो लड़ाई भी शुरू होगी। अब वो लड़ाई क्यों नहीं शुरू हो रही है, क्योंकि बच्चे कर्मातीत अवस्था को नहीं पाए हैं। तो बच्चे जब कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तब वो लड़ाई भी शुरू होगी। दिन प्रतिदिन आवाज होता जाएगा। आवाज कौन सा, मौत आया कि आया, आया कि आया, हम बम फेंकेंगे, हम ये धमकियां देते रहते हैं ना आपस में। तो बाबा कहते हैं वो धमकियां देते हैं तो मौत से डरेंगे लोग, कभी भी हमारे ऊपर सिर पर बम न फटे, डरते हैं ना। तो दिन प्रतिदिन आवाज होता जाएगा मौत का, मौत से डरेंगे। तो बाप कहते हैं ये ज्ञान सबके लिए है हमेशा, बाबा कहते हैं सब धर्म वालों को ये ज्ञान दो, ये ज्ञान सबके लिए है, सिर्फ बाप का परिचय देना है, हम आत्माएं सब भाई भाई है, ये सबको समझाना है। सब एक बाप को याद करते हैं, गॉड फादर कहते हैं ना, करके कोई नेचर को मानने वाले भी होते हैं, परमात्मा एक है ये मानते नहीं है, समझते ये नेचर ही गॉड है, नेचर इज गॉड, ये पहाड़ नदियां हाँ जो भी सुंदर बगीचे हरियाली यही भगवान है, और कौन सा भगवान है। तो बाबा कहते ये जो प्रकृति है ये तो प्रकोप भी लाती है, तो भगवान थोड़ी प्रकोप लाता है। तो बाबा कहते कोई करके नेचर को मानने वाले होते हैं, प्रकृति को ही भगवान मानते हैं, परंतु गॉड तो है ना एक, उनको याद करते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए। मोक्ष तो है नहीं, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को रिपीट करना है। बुद्धि भी कहती है जब सतयुग था तो एक भारत ही था, सब कुछ भारत में इंक्लूड था जो भी था, तो सब तो एक भारत ही था। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, लाखों वर्ष की तो बात हो न सके, लाखों वर्ष होते तो कितनी ढेर जनसंख्या हो जाती। अभी 5000 साल ही हुए हैं तो 800 करोड़ जनसंख्या, तो बताओ लाखों वर्ष होती तो कितनी जनसंख्या हो जाती। तो बाप कहते हैं अब कलयुग पूरा हो, सत्युग की स्थापना हो रही है। वो समझते हैं कलयुग तो अर्जुन बच्चा है, इतने हजार वर्ष की आयु है, तुम बच्चे जानते हो ये कल्प है ही केवल 5000 वर्ष का, भारत में ही ये स्थापना हो रही है, भारत ही अब स्वर्ग बन रहा है, अभी हम श्री मत पर ये राज्य स्थापन कर रहे हैं। अब बाप कहते हैं मां एकम याद करो, तो पहला पहला शब्द ही ये दो है, मां एकम याद करो मन मना भव, तो ये दो शब्द है। जब तक बाप का निश्चय नहीं होगा तब तक प्रश्न पूछते रहेंगे, ये आपको किसने बताया, ये कहां से तुम लाए। तो बाप का अगर उनको परिचय नहीं जाए तो फिर प्रश्न नहीं पूछेंगे, फिर कोई बात का उत्तर नहीं मिलेगा तो समझेंगे ये जानते कुछ भी नहीं है, क्योंकि बाप का परिचय उनको पूरा नहीं मिला है और प्रश्न पूछते रहते हैं, फिर अगर जवाब नहीं हम दे पाते हैं तो कहेंगे कि ये तो कुछ भी नहीं जानते हैं। और कहते हैं भगवान हमको पढ़ाते हैं, इसीलिए पहले पहले तो एक ही बात पर ठहर जाओ, परमात्मा का परिचय उनको पूरा दिलाओ, एक ही बात पर ठहर जाओ, पहले बाप का निश्चय करे कि बरोबर सभी आत्माओं का बाप एक ही है और वो है रचयिता, तो जरूर संगम पर ही आएंगे। हाँ रचयिता है तो कब आकर के अपनी रचना का ज्ञान देते, तो संगम पर ही आएंगे। बाप कहते हैं मैं युगे युगे नहीं कल्प के संगम युगे युगे आता हूं, मैं हूं ही नई सृष्टि का रचयिता, तो बीच में कैसे आऊंगा। अब नई सृष्टि उनको रचनी है तो अभी आधी पुरानी हुई है तो बाप आके क्या करेगा, जब एकदम पुरानी हो जाए तब तो आकर नई बनाए। तो बाबा कहते फिर मैं बीच में कैसे आऊंगा, मैं आता ही हूँ पुरानी और नई दुनिया के बीच में, इसको इस समय को पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। तुम पुरुषोत्तम भी यहाँ बनते हो, हाँ सत्युग में बनेंगे नहीं, वहां यहाँ बन करके वहां पुरुषोत्तम होते हैं, तुम पुरुषोत्तम भी यहाँ बनते हो, लक्ष्मी नारायण सबसे पुरुषोत्तम है, सब पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम लक्ष्मी नारायण है। एम ऑब्जेक्ट कितनी सहज है, सबको बोलो ये स्थापना हो रही है। बाबा ने कहा है पुरुषोत्तम अक्षर जरूर डालो, क्योंकि यहाँ तुम कनिष्ठ से पुरुषोत्तम बन रहे हो। ऐसी ऐसी मुख्य बातें भूलनी नहीं चाहिए। हाँ, कितनी ये मुख्य बात है, ये भूलनी नहीं चाहिए। और संवत की डेट भी जरूर लिखनी चाहिए। कैलेंडर है ना, अभी हिंदू कैलेंडर बताते 2000 कुछ, तो क्रिश्चियन कैलेंडर 2025, तो ये संवत है। और संवत की डेट भी जरूर लिखनी चाहिए। यहाँ तुम्हारी पहले से राजाई शुरू हो जाती है, इसलिए लक्ष्मी नारायण शुरू शुरू में आते हैं तो संवत शुरू हो जाता है, विक्रमा जी संवत। और कैसे शुरू होता है, किससे शुरू होता है, 111 बाबा कहते हैं, पहला दिन, पहला महीना, पहला साल। लक्ष्मी नारायण जैसे गद्दी पर बैठे, उनसे संवत शुरू हो जाता है। और संवत की डेट भी जरूर लिखनी चाहिए। यहाँ तुम्हारी पहले से राजाई शुरू हो जाती है। औरों की राजाई पहले से नहीं होती है, जो दूसरे धर्म वाले आते हैं उनकी राजाई शुरू से नहीं होती है, परंतु बाबा जब आते हैं देवी देवता धर्म की स्थापना करने, और जैसे देवता बनते हैं पहले से ही राजाई शुरू हो जाती है। औरों की राजाई पहले से नहीं होती, वो तो धर्म स्थापक आए तब उनके पीछे उनके धर्म की वृद्धि हो, वो आत्मा ही उनकी परम धाम से आए और उनकी वृद्धि हो, तब जाके उन धर्मों में राजाई शुरू होती है। उनके धर्म की वृद्धि हो, करोड़ों बने तब राजाई चले। तुम्हारी तो शुरू से सत्युग में राजाई होगी। ये किसको भी बुद्धि में नहीं आता कि सत्युग में इतनी राजाई कहाँ से आई। अभी तो कुछ है ही नहीं, कोई राजाई नहीं है, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। अगर नाम के राजा भी है, लेकिन है तो प्रजा का प्रजा पर राज्य। तो बाबा कहते इतनी राजाई एकदम फट से कैसे आ गई, जबकि है ही नहीं भारत में। कलयुग अंत में इतने ढेर धर्म हैं, फिर सतयुग में एक धर्म एक राज्य कैसे हुआ, कहाँ अभी इतने अनेक, और सतयुग आया और एक ही धर्म राज कैसे हुआ, एक धर्म एक राज्य कैसे हुआ। कितने हीरे जवाहरातों के महल है। भारत ऐसा था जिसको पैराडाइज कहते थे, 5000 वर्ष की बात है। हाँ बाबा कितना सहज समझाते हैं, केवल 5000 वर्ष की बात है। लाखों वर्ष का हिसाब कहाँ से आया, मनुष्य कितने मूंझे हुए हैं, अब उनको कौन समझाए। हाँ बाबा कहते हैं कौन समझाए, वे समझते थोड़ी हैं कि हम आसुरी राज्य में हैं। इनकी यानी देवताओं की तो महिमा है, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, इनमें 5 विकार नहीं है। क्योंकि क्यों इनमें 5 विकार नहीं है देवताओं में, क्योंकि ये देही अभिमानी है। जो देही अभिमानी होगा तो उसमें विकार कहाँ से आएंगे, क्योंकि देही अभिमानी है। तो बाप कहते हैं मुख्य बात है याद की, 84 जन्म लेते लेते तुम पतित बने हो, अब फिर पवित्र बनना है। ये ड्रामा का चक्र है, कोई प्रश्न नहीं कर सकता है, पतित बने फिर हम पावन बने फिर पतित बने, ऐसा क्या चक्र है। बाबा कहते हैं ये चक्र है, ये बस समझना है, ये ड्रामा है, इसमें प्रश्न नहीं पूछो क्यों क्यों, जरूरत नहीं। ये ड्रामा का चक्र है। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, ज्ञान के तीसरे नेत्र को धारण कर अपनी धोखेबाज आंखों को सिविल बनाना है। आंखें बड़ी धोखेबाज है। तो ज्ञान के तीसरे नेत्र को धारण कर अपनी धोखेबाज आत्माओं को सिविल बनाना है। याद से ही कर्म इंद्रियां शीतल सतोगुणी बनेगी, इसलिए यही मेहनत करनी है। दूसरा, धंधे आदि से टाइम निकाल एकांत में जाकर याद में बैठना है। कारण देखना है कि हमारा योग क्यों नहीं लगता है। अपना चार्ट जरूर रखना है। वरदान, सहन शक्ति द्वारा, बाबा कितना सहन शक्ति पर जोर देते हैं, सहन शक्ति बहुत जरूरी है। सहन शक्ति द्वारा अविनाशी और मधुर फल प्राप्त करने वाले सर्व के स्नेही भव। सहन शक्ति द्वारा अविनाशी और मधुर फल प्राप्त करने वाले सर्व के स्नेही भव। सहन करना माना मरना नहीं है। कई कहते ना, मुझे ही मरना है, मुझे ही मरना है, मुझे ही सहन करना है। पर बाबा क्या कहते हैं, सहन करना माना मरना नहीं है, लेकिन सबके दिलों में स्नेह से जीतना है। मरना नहीं है, सबके दिलों में स्नेह से जीना है। हाँ, स्नेह से जीना है सबके दिलों में। कैसा भी विरोधी हो, रावण से भी तेज हो, रावण तो सबसे तेज था, उससे भी कोई तेज हो, एक बार नहीं 10 बार सहन करना पड़े, फिर भी सहन शक्ति का फल अविनाशी और मधुर है। सिर्फ ये भावना नहीं रखो कि मैंने इतना सहन किया तो ये भी तो कुछ करे, ये भी तो सहन करे, केवल मैं ही सहन करूं क्या, ये भावना नहीं रखो। अल्पकाल के फल की भावना नहीं रखो, रहम भाव रखो, यही है सेवा भाव। सेवा भाव वाले सर्व की कमजोरियों को समा लेते हैं, उनका सामना नहीं करते हैं। सामना किया माना सहन शक्ति नहीं है ना, और इसका मतलब ये भी कि कमजोर है, उसके भी सामना करते हैं, उनका सामना नहीं करते। स्लोगन, जो बीत चुका उसको भूल जाओ, बीती बातों से शिक्षा लेकर आगे के लिए सदा सावधान रहो। जो बीत चुका उसको भूल जाओ, रात गई बात गई ऐसे कहते हैं ना, जो बीत चुका उसको भूल जाओ, बीती बातों से शिक्षा लेकर आगे के लिए सदा सावधान रहो। अव्यक्त इशारे, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो के अंतर्गत, आज पहली तारीख है तो आज से नया अव्यक्त इशारे है, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। अभी तक था ज्वालामुखी योग, तो अभी ये आज से शुरू हुआ नया अव्यक्त इशारे। जैसे बाप दादा को रहम आता है, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर रहम दिल बन अपनी मनसा वृत्ति से वायुमंडल द्वारा आत्माओं को बाप द्वारा मिली हुई शक्तियां दो। जब थोड़े समय में सारे विश्व की सेवा संपन्न करनी है, थोड़े समय में सारे विश्व की सेवा संपन्न करनी है, कितनी सेवा करनी है, तत्वों सहित सबको पावन बनाना है, तो मनसा द्वारा तीव्र गति से सेवा करो, योग की शक्तियों का प्रयोग करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अच्छा, कुछ सूचना ही है, सभी मधुबन निवासी और ग्लोबल हॉस्पिटल के समर्पित और ट्रायल वाले भाई बहने 11 बजे आज 11 बजे मेडिटेशन हॉल में बैठे दादी कॉटेज के प्रकाश भाई मिलेंगे और सौगात देंगे। उस दिन उनका जन्मदिन मनाया था, 60 वर्ष की उसकी लौकिक आयु और 50 साल की अलौकिक आयु, तो उन्होंने जन्मदिन मनाया था और सबको सौगात वहाँ शांतिवन वालों को तो उषा दे दी और अभी आज पांडव भवन वालों को देंगे। 11 बजे मधुबन निवासी और ग्लोबल हॉस्पिटल के समर्पित और ट्रायल वाले भाई बहने 11 बजे यहाँ मेडिटेशन हॉल में बैठे दादी कॉटेज के प्रकाश भाई मिलेंगे और सौगात देंगे। और दूसरा, जो पांडव भवन निवासी भाई बहने तथा ट्रायल वाले भाई बहने जिन्होंने कल मोहिनी दीदी जी के जन्मदिन की सौगात नहीं ली, मोहिनी दीदी का कल आए थे और मधुबन वालों को सौगात दी थी, वे कृपया आज सुबह 10 बजे तक अपनी सौगात ले लेवे रवि भाई से, टोली विभाग से ले लेवे, वहाँ दिनेश भाई से लेंगे 10 बजे तक। अच्छा, ओम शांति।